तो ये पुस्तक जो समाधियां वृंदावन में है महान जी स्वामी ने लिखी है, इस पुस्तक से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जगदीश पंडित पूरे संसार के रक्षक हैं, पूरे संसार के रक्षक हैं। तो वे कृष्ण प्रेम के घने बादल हैं जो कि सबके ऊपर उस प्रेम की वर्षा करते हैं। जगदीश पंडित, ये चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है। जगदीश पंडित और इनके भाई थे महेश पंडित, ये जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही रहते थे। कहां पर? जगन्नाथ मिश्र के घर के पास रहते थे। कहां पर? हाँ, श्रीधाम मायापुर में है? और जगन्नाथ पंडित कौन है? जगन्नाथ मिश्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं। तो एक दिन एकादशी को जो बालक निमाई था उसने रोना शुरू किया। बालक निमाई कौन है? चैतन्य महाप्रभु अपनी बाल लीला में है, वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और ऐसे रोए कि चुप ही नहीं होते। इसके पहले वो कभी भी रो रहे हैं तो चुप कराने का बड़ा अच्छा उपाय था, उनका रोना बंद कराने का बड़ा अच्छा उपाय था। क्या था? हरि नाम कीर्तन। जैसे हरि नाम कीर्तन करो तो उनका रोना बंद, वो प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन एक ऐसी भी घटना हुई, वो एकादशी का दिन था और वो ऐसे रोए कि हरि नाम कीर्तन से भी चुप नहीं होते। एक विशेष उनका जो है भगवान का संदेश था कि एकादशी के दिन अन्न ना खाओ, इसलिए जो माला जाप करते हैं नियमित रूप से तो उनका फिर कर्तव्य होता है कि उसके बाद चार नियम का पालन करें और फिर एकादशी का व्रत करें, एकादशी को अन्न ना खाएं। तो ये विशेष जो है ना भगवान की लीला है शिक्षा देने के लिए, वो नाम कीर्तन से भी चुप नहीं होते हैं। तो वो तभी जो है ना मतलब चुप हुए जब उन्हें महाप्रसाद मिला जगदीश पंडित के घर का, जो विशेष रूप से बना था। तब निमाई ने जो है ना एक चमत्कार किया। जगदीश पंडित जो है अचानक देखते हैं कि जो बालक गौरांग है उसने सुंदर भगवान कृष्ण का रूप दिखलाया। कृष्ण का जो शरीर है वो नवीन मेघ के समान सुंदर है ना, बहुत सुंदर। और उनके शरीर के जो वस्त्र हैं वो विद्युत के समान पीले चमकीले वस्त्र हैं और मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृष्ण रूप का दर्शन कराया। किसको? जगदीश पंडित को कराया। जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी चले गए, उन्होंने सन्यास ले लिया, 24 साल की अवस्था में सन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो फिर जगन्नाथपुरी में रहने लगे चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने जगदीश से कहा कि सहायता करो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को फैलाने में। तो जगन्नाथ भगवान की आज्ञा लेकर के जगदीश पंडित ने जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो नदिया में वो ले जाकर के स्थापित किया उनको, और उनकी पूजा स्थापित की। उनका जो गांव है नवदीप के पास वो है यशोरा, तो यशोरा गांव में उन्होंने स्थापित किया। तो कृष्ण की नित्य लीला में जगदीश पंडित का एक विशेष कार्य है, एक विशेष नाम है। ये जो है चंद्रहास नाम के नर्तक है कृष्ण की लीला में। कृष्ण की लीला हमेशा होती है कहां पर? गोलोक धाम में कृष्ण की नित्य लीला होती है। तो कृष्ण की नित्य लीला में ये जो है चंद्रहास नाम के नर्तक हैं। चले जगदीश पंडित तेरो भाव देखी महाभूत की। अब जीव गोस्वामी के बारे में इसमें काफी बातें लिखी हैं। जीव गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हैं हमारी गुरु परंपरा के, तो उनके बारे में मैं आपको सुना रहा हूं। श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी इन दोनों के ये भतीजे हैं जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई भाई थे, बहुत बड़े आचार्य इस गौड़ीय परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने प्रत्यक्ष उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी। कौन? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके भतीजे जीव गोस्वामी। आयोजन के तिरुभाव तो बचपन से ही जीव गोस्वामी के शरीर में बहुत सुंदर महापुरुष के लक्षण थे। महापुरुष के लक्षण किसी किसी बच्चे में जन्म से होते हैं, तो इनके शरीर में जन्म से ही महापुरुष के लक्षण थे। कैसे? नेत्र कमल के समान सुंदर, नासिका ऊंची, और जो ललाट है वो चौड़ा, छाती भी चौड़ी और भुजाएं लंबी, और शरीर जो है प्रकाश पैदा करता है, बहुत तेजस्वी शरीर है, सुनहला शरीर प्रकाश पैदा करता था। तो बचपन से ही जो है ना इन्होंने कृष्ण और बलराम के जो श्री विग्रह हैं उनकी पूजा शुरू कर दी, और शुद्ध भक्ति प्रदर्शित करते हुए ये जब उनकी पूजा करते थे तो अक्सर रोते थे, प्रेम से रोने लगते थे। प्रेम में जब उनको वस्त्र धारण कराते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको फूल अर्पित करते हैं, आभूषण पहनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट मिठाइयों का भोग लगाते हैं, किसको? कृष्ण बलराम के विग्रह को। तो उसमें से कुछ वो लेते महाप्रसाद और अपने सहपाठियों को बांटते बचपन में ही। शुरू से ही जीव ने जो है दूसरे जीवों के प्रति दया दिखलाई। जीव जो है कृष्ण बलराम में इतने आसक्त थे कि जब सोते थे तो क्या करते थे? कृष्ण बलराम को अपनी छाती से लगा करके सोते थे, वो छोड़ते नहीं थे। कृष्ण बलराम को अपनी छाती में लगा करके तब सोते थे, वो उनके बिना सोते भी नहीं थे। जीव गोस्वामी इतनी आसक्ति थी कृष्ण बलराम में। उनके जो माता पिता हैं वो सोचते थे कि ये तो केवल खेलता है, लेकिन जो गांव के वासी थे वो बहुत प्रसन्न होते थे देख करके कि जीव का कृष्ण बलराम में कितना प्रेम है। अब पाठशाला में बड़ी जल्दी संस्कृत व्याकरण में निपुण हो गए, काव्य में और तर्क में, न्याय में, इन सब चीजों में निपुण हो गए जीव गोस्वामी। श्रीमद भागवत से उनके जीवन को भी जीवन प्राप्त हो गया, बचपन से ही श्रीमद भागवत प्राप्त हुई। कृष्ण कथा से जो है ना वो हमेशा प्रसन्न रहते थे कृष्ण कथा सुनते, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कृष्ण के अलावा उनसे कोई और बात करें। वो बचपन में भी जो है ना इतने तेजस्वी थे कि उनसे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कृष्ण के अलावा और कोई बातचीत करे, इतना इनका प्रभाव था। उन्होंने फिर नवदीप धाम की यात्रा की श्री नित्यानंद प्रभु के साथ। जब ये नवदीप धाम आए तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके परम धाम जा चुके थे, नित्यानंद प्रभु थे। तो नित्यानंद प्रभु ने इनको देखो कितनी कृपा करी इनके ऊपर, इनको स्वयं जो है ना नवदीप धाम के लीला स्थल दिखलाए, चैतन्य महाप्रभु की लीला के स्थान दिखलाए जीव गोस्वामी को। और फिर ये नित्यानंद प्रभु के आदेश से बनारस में गए और संस्कृत का अध्ययन किया, इसके बाद फिर वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन में इनके चाचा, दो चाचा पहले से थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो ये भी वृंदावन में आ गए और बहुत ही विनम्रता पूर्वक सेवा करते थे रूप गोस्वामी की, उनके चरणों को धोते थे और उनकी हस्तलिपि तैयार करते थे, पांडुलिपि रूप गोस्वामी की, और उनकी पुस्तकों का जो है संपादन करते थे, और उन्होंने रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की। एक बार बड़े वृद्ध वैष्णव थे वल्लभाचार्य, उन्होंने रूप गोस्वामी के जो पुस्तक है उसमें कुछ उन्होंने समीक्षा की, रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु है, तो उसमें उन्होंने कुछ समीक्षा की वल्लभाचार्य ने, क्योंकि काफी वृद्ध थे, उम्र में काफी वृद्ध थे, तो रूप गोस्वामी ने उनकी उस समीक्षा को स्वीकार कर लिया सम्मान के कारण। हालांकि रूप गोस्वामी की पुस्तक में कोई गलती नहीं थी, रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत के साथ ही हृदय वर्धते तावत भक्ति रसस्य कथम उद्भवो भवेत्, कि जब तक भुक्ति और मुक्ति की कामना ये पिशाची है हृदय में रहती है तब तक भक्ति के रस का जो उदय है वो कैसे हो सकता है। तो उन्होंने तो पिशाची कहा है किसको, भुक्ति की कामना और मुक्ति की कामना को पिशाची कहा है। लेकिन वल्लभाचार्य ने यह मान लिया कि उन्होंने भुक्ति और मुक्ति को पिशाची कहा है, तो उन्होंने उनको जो है मतलब सलाह दी कि इसको सुधार करो। तो रूप गोस्वामी ने कुछ भी उनका विरोध नहीं किया और स्वीकार कर लिया उनका संशोधन। लेकिन जीव गोस्वामी पास में खड़े थे तो अपने गुरु के सामने तो कुछ नहीं बोल सके, अपने गुरु के पक्ष में वो कुछ नहीं बोल सके क्योंकि उनके गुरु विनम्र थे वल्लभाचार्य जी पर भी। लेकिन कुछ देर के बाद जब रूप गोस्वामी ने आदेश दिया जीव गोस्वामी को कि इनको ले जाओ जमुना जी में स्नान कराओ, तो वल्लभाचार्य के कपड़े अपड़े लेकर के जब स्नान कराने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कहा कि जो आपने सुधार किया है उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें पहले से गलती नहीं है। तो वल्लभाचार्य भी इतने उदार थे कि जीव गोस्वामी के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया और बाद में आकर के रूप गोस्वामी से कहा कि हाँ हाँ जो मैंने सुधार किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी पुस्तक में कोई गलती नहीं है और ये आपका जो शिष्य है ये बड़ा बुद्धिमान है, इसने मुझे सुझाव दिया और मुझे समझ में आ गया कि सुधार की कोई आवश्यकता नहीं। तो रूप गोस्वामी ने उनके सामने तो बात मान ली। जब वल्लभाचार्य चले गए तो फिर उन्होंने जो है जीव गोस्वामी को डांटा। अच्छा अब यहां लिखा है कि तभी बहुत जो है छोटे थे जीव गोस्वामी वल्लभाचार्य के तुलना में, लेकिन उन्होंने बड़े निर्भीकता पूर्वक अपने गुरु के पक्ष में वल्लभाचार्य को बोला। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांटा कि तो अब तुम वृंदावन में मत रहो, तुम वृंदावन छोड़ दो। देखा जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के पक्ष में ही बोला था और रूप गोस्वामी इतने गुस्सा हो गए कि जीव गोस्वामी को कहते हैं कि तुम वृंदावन में मत रहो, जाओ यहां से। अब जीव गोस्वामी बड़े दुखी होकर के अपने जीवन की आशा भी उन्होंने छोड़ दी कि गुरु ने अगर त्याग दिया तो अब जीने से क्या फायदा है, इसलिए वो यमुना जी के तट पर नंद घाट में जो है एक मगरमच्छ का बनाया हुआ एक गड्ढा था, तो वहां तो खैर पानी नहीं था, उसी गड्ढे में वो बैठे रहते और भजन करते रहते। नंद घाट जो है रूप गोस्वामी के भजन कुटीर से 45 मिनट की दूरी पर है, अगर पैदल चलें रूप गोस्वामी के भजन कुटीर से तो 45 मिनट में नंद घाट पहुंच जाएंगे। तो वहां पर जीव गोस्वामी आ गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा वृंदावन से बाहर जाओ, तो वो जो है वृंदावन का समझो कि वो सीमा है, तो वृंदावन की सीमा के बाहर वो आ गए। तो और यहां जो है वो भजन करते थे। जीव गोस्वामी उस समय क्या करते थे, आटा जो है किसी कहीं से मांग लेते थे और जमुना जी के पानी में उसको घोल करके और पी जाते थे। तो बहुत ज्यादा जो है फिर बाद में उनका शरीर अस्वस्थ हो गया और सनातन गोस्वामी को पता चला, तो सनातन गोस्वामी फिर जीव गोस्वामी को ले आए दोबारा रूप गोस्वामी की सेवा में। तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार समीक्षा की थी गुरु शिष्य के इस लीला में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को दूर कर दिया हमें सिखाने के लिए, आज के जो भक्त हैं उनको शिक्षा देने के लिए। तो ये इसलिए नहीं किया था कि श्री जीव गोस्वामी को शिक्षा देना चाहते थे या उनको दंड देना चाहते थे, नहीं, क्योंकि जीव गोस्वामी भी कृष्ण की लीला की मंजरी हैं और रूप गोस्वामी भी मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी भी मंजरी हैं, ये तो सब नित्य सिद्ध हैं, इन्हें थोड़ी कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन ये जो लीला करी है रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को जो दूर किया था अपने पास से, तो हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए ये किया था, सब जीवों को शिक्षा देने के लिए, जो कि उन्होंने उपदेशामृत में लिखा है। उपदेशामृत में जीव रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। हर समय भक्त को जो है अपनी वाणी के वेग को नियंत्रित करना चाहिए। वाचो वेगम, वाचो वेगम का मतलब बोलने की, हमेशा बोलने की इच्छा होती है, किसी बात में तुरंत जवाब देने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विनम्रता पूर्वक सुन लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है बोलना नहीं चाहिए, और मुंह नहीं ललाना चाहिए, जवान नहीं ललाना चाहिए ज्यादा। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी को शिक्षा दी। ये तो जीव गोस्वामी भी बहस कर सकते थे कि आप मुझे डांट रहे हैं, मैंने तो आपका ही पक्ष लिया, मैंने क्या गलत कहा। वल्लभ आचार्य भी तो प्रसन्न हुए, मैंने उनको जो कुछ बताया है, आपकी पुस्तक में कोई गलती नहीं थी, उन्होंने आपकी पुस्तक में गलती निकाली, वो भी तर्क कर सकते थे। जीव को सामने कोई तर्क नहीं किया, रूप गोस्वामी को डांटा है तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहां से, तो चले गए जीव गोस्वामी। कितनी जो है ना उनका नियंत्रण है अपनी जीवा में। लेकिन यहां पर होता क्या है कि अगर कोई कुछ बताता है हमें, सिखाता है, या कुछ गलती बताता है, तो गलती ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी दबाने के लिए और झूठ बोलते हैं और बहस करते हैं और बहस करते हैं। जहां गलती नहीं है वहां पर भी वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं जीव गोस्वामी, और कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। और यहां ये होता है कि हम गलती पे गलती करते जाते हैं और फिर भी बहस करते हैं कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, है ना। तो ये शिक्षा देने के लिए हर समय भक्तों को जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए, जिनके से भी ज्यादा नीच होकर के, जो अपने से सीनियर भक्त हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके सामने जिनके से भी ज्यादा नीच होकर के सहन करना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। फिर श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामियों के तिरुभाव के बाद जीव गोस्वामी ही गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य बने हैं। जितने भी वैष्णव थे नवद्वीप के और वृंदावन के और जगन्नाथपुरी के, सभी वैष्णवों के वे क्या बने, संप्रदाय आचार्य। संप्रदाय आचार्य का मतलब यह है कि जितने भी वैष्णव हैं वो कुछ भी अगर ग्रंथ लिख रहे हैं तो जीव गोस्वामी को दिखलाएंगे कि हमारे संप्रदाय के अनुसार है कि नहीं है, तो वो जो है प्रामाणिक आचार्य थे इस गौड़ी संप्रदाय के। और तीन स्थानों में गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव रहते थे, एक तो नवद्वीप धाम, दूसरा वृंदावन धाम और तीसरा जगन्नाथपुरी। तो तीनों स्थानों के जो वैष्णव हैं वो जीव गोस्वामी को ही प्रमाण मानते थे, कोई भी अगर उन्हें संदेह हो, शंका हो, प्रश्न हो, तो जीव गोस्वामी से ही वो सब अपनी शंका संदेह दूर करते थे। यद्यपि इनसे कोई विरोध नहीं करते थे, परंतु ये हमेशा सब जीवों के प्रति बहुत विनम्र सेवा की भावना रखते थे। जब भी बंगाली वैष्णव बंगाल से वृंदावन आते थे तो वे बहुत प्रेम से इनका स्वागत करते थे वैष्णवों का, और उनके प्रसाद की व्यवस्था और उनके आराम पूर्वक रहने की व्यवस्था करते थे, और यहां तक कि ब्रजमंडल परिक्रमा में भी उनको मार्गदर्शन करते थे, परिक्रमा कराते थे, उनको अपने साथ ले जाते थे और कृष्ण की लीला की स्थलियां दिखलाते थे जीव गोस्वामी। संस्कृत के तो महान महान विद्वान थे जीव गोस्वामी। संस्कृत के श्लोक जो है ना, जब वो लिखते थे जीव गोस्वामी, जब संस्कृत के श्लोक लिखते थे तो श्लोक जो है उनको बनाने में देर नहीं लगती थी, उनके मन में ही श्लोक बन जाते थे, अपने मन में ही उनके श्लोक बन जाते थे। और जब वो लिखते थे श्लोक, जब लिखते थे तो जैसे पत्थर की लकीर हो, उसमें कुछ भी फिर अदल बदल नहीं होता था। उन्होंने एक बार उनकी कलम चल गई तो चल गई, उसमें कोई फिर गलती होती नहीं थी उनके श्लोकों में, और उन्होंने लिख दिया, मतलब मानो कि धातु के जो ना पत्र में जैसे मान लो लिख दिया हो, ताड़ पत्र में लिखते थे, इन्हें धातु के ऊपर लिखा जाता है गैसे, और इनकी जो है ना लेखनी में किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी कि दोबारा लिखा जाए या उसको सुधारा जाए, चेक किया जाए, नहीं। और प्रत्येक श्लोक जो है बिल्कुल पूर्ण छंद के साथ में बंधा रहता था, प्रत्येक श्लोक की बिल्कुल सही सही रचना होती थी और अर्थ भी जो ना बिल्कुल स्पष्ट होता था। तो ये सबसे बड़े भारतीय इतिहास में दार्शनिक हुए, इनके समान ना तो कोई दार्शनिक हुआ है आज तक, ना है और ना होगा आगे भी। संस्कृत के जो उस समकालीन जो विद्वान थे वो उनको कहते थे कि सबसे महान विद्वान है ये संस्कृत के आज तक विश्व के इतिहास में अगर कोई हुआ है तो जीव गोस्वामी हुए हैं। जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे छह गोस्वामियों में, परंतु सबसे बड़े ये लेखक हैं। उन्होंने हाफ मिलियन संस्कृत वर्सेस, हाफ मिलियन का मतलब कितना हुआ, 5 लाख, 5 लाख श्लोक लिखे हैं संस्कृत के कुल मिलाकर के। उनकी पुस्तकें लगभग 25 पुस्तकें हैं, लेकिन 5 लाख श्लोक उन्होंने संस्कृत के लिखे हैं इन पुस्तकों में अपने जीवन काल में, जबकि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। 18 पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर के 4.5 लाख है। आप सोचो इन्होंने 4.5 लाख, 18 पुराणों में जितने श्लोक हैं उससे ज्यादा श्लोक लिखे हैं, 5 लाख श्लोक लिखे हैं, और इनके श्लोक जितना इनके जितने ग्रंथ हैं वो सब कृष्ण की महिमा, कृष्ण के गुणगान पर है। जबकि 18 पुराणों में तो कृष्ण के अलावा और भी दूसरे विषयों का भी वर्णन है, जिसमें कि मनुष्य के जीवन का जो है ना परम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जीव गोस्वामी ने जो कुछ भी लिखा है सब कृष्ण के बारे में ही लिखा है। तो लगभग 25 पुस्तकें लिखी हैं और 5 लाख श्लोक लिखे हैं। उनकी पुस्तकें सिद्ध करती हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है ये वैदिक ज्ञान का सार है और समस्त धर्म की पूर्णता है। इनके पुस्तक एक तो है गोपाल चंपू और दूसरा है षट संदर्भ और तीसरा हरिनाम व्याकरण, ये तीन जो है ना बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। संदर्भों में अच्छी प्रकार से स्थापित हुआ है श्रीमद् भागवत का जो परम सत्य है, और उनसे पुष्ट होता है भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, स्वयं भगवान हैं, और हर वस्तु के कारण हैं, सब अवतारों के भी स्रोत हैं। कोई व्यक्ति जो बड़ी सावधानी से इन पुस्तकों को पढ़ता है तो कृष्ण का भक्त बन जाएगा। जीव गोस्वामी का जो नाम है जीव, ये बड़ा रोचक है। अगर हम भागवत के एक श्लोक के प्रकाश में अगर देखें तो जीव गोस्वामी का जो नाम जीव जो है बड़ा रोचक है। भागवतम का एक श्लोक है, अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम जीवो जीवस्य जीवनम, भागवतम का एक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस संसार में एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। कैसे, मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, इस प्रकार से जिंदा रहते हैं। ये भौतिक संसार इस प्रकार से बना हुआ है कि जीवो जीवस्य जीवनम, कि एक जीव को दूसरे जीव खाते हैं, इस प्रकार से उनके जीवन की रक्षा होती है। तो एक जीवन को खत्म करके ही दूसरा जीवन अपना चलाता है, चलता है। ये भौतिक संसार इस प्रकार का है। हस्तानी सहस्ताना, तो जिनके हाथ नहीं है, जिन जीवों के हाथ नहीं है वे भोजन होते हैं उनके, जिनके पास हाथ है। जो हाथ वाले लोग हैं तो उनको खाते हैं जिनके हाथ नहीं है। अपदान चतुष्पदाम, और जिनके पैर नहीं है, है ना, उनको खाते हैं वे लोग जिनके चार पैर हैं। चार पैर वाले जो जीव हैं उन जीवों को खाते हैं जिनके पैर नहीं है, है ना। जीवो जीवस्य जीवनम, जो पशु हैं बिना हाथ वाले वे भोजन है उनके, जिनके हाथ हैं, और जिनके पैर नहीं है वे भोजन है, उनके जिनके चार पैर हैं। हर जगह एक जीव दूसरे जीवन का, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। लेकिन जीव का दूसरा अर्थ यह है कि जीवो जीव से जीवनम, इसका अर्थ यह भी है कि जीव जीव का जीवन है, मतलब जीव गोस्वामी सब जीवों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। जीवो जीव से जीवनम, अगर जीव का अर्थ जो है जीव गोस्वामी मान लिया जाए तो जीव गोस्वामी ने ही सब जीवों को जीवन प्रदान किया है। कैसे? अपने ये ग्रंथ जो प्रदान किए हैं उनसे जीव जीवन प्राप्त हुआ है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो जीव को सामने दिया है अपने 25 पुस्तकों में, ये सब भक्तों को जीवन प्रदान करती हैं। तो जीव का दूसरा नाम है जीवका, जीवका। जो व्यक्ति दूसरे जीवों को जो है दिव्य ध्वनि बुलवाए, श्री जीव गोस्वामी ने ऐसा किया है। ये जो श्रीमद् भागवत का बड़ा अद्भुत अर्थ निकाला है अपने भागवत तात्पर्यों में और सत संदर्भों में, जो व्यक्ति जीव के स्वभाव को विस्तार करे और भगवान के साथ संबंध स्थापित कराए, और जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कराए, तो वो जीव जीवक कहलाता है। जीव तो जीव गोस्वामी में ये गुण है। तो जीव गोस्वामी की जो है जो गोपाल चंपू नामक एक पुस्तक है उसमें से बड़ा सुंदर कुछ इसमें निकाला है, कुछ बातें निकाली हैं, उसको आप सुनिए। गोपाल चंपू जो है बड़ा सुंदर ग्रंथ है जीव गोस्वामी का, इसमें भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा विस्तृत लिखा हुआ है। तो वृंदावन की जो लीलाएं हैं भगवान राधा दामोदर की, बड़ी सुंदर उसमें वर्णन है। तो ये जो लीला इसमें लिखी है ये गोपाल चंपू से निकाली गई है, उस समय की जब गोवर्धन पूजा हुई, तो गोवर्धन पूजा के समय भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई, और गोवर्धन से जो है स्वयं ही कृष्ण एक बहुत बड़ा रूप धारण करके निकल आए, ये कहते हुए कि मैं गिरिराज हूं। पथे तो स्वयं कृष्ण अपने छोटे रूप में ब्रजवासियों दिखाते हैं कि प्रणाम करो प्रणाम करो, ये गिरिराज महाराज है। और ब्रजवासी नहीं समझते हैं कि ये कृष्ण ही ने जो ना इतना बड़ा रूप धारण किया हुआ है, और यहाँ बालक के रूप में कह रहे हैं सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो देखो कितनी कृपा कर रहे हैं गिरिराज महाराज आ गए दर्शन देने के लिए। तो इसमें लिखा है कि वो जो गोवर्धन पर्वत से बहुत विशाल शरीर धारण करके जब वो गिरिराज महाराज निकले, तो जितने ब्रजवासी हैं और कृष्ण सहित सब उनको प्रणाम करते हैं, और वो आकाश को छू रहे थे इतना बड़ा शरीर था, उनको सब प्रणाम करते हैं ब्रजवासी लोग। और श्री कृष्ण जो है अपने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ब्रजवासियों को दिखाते कि कैसे हाथ जोड़ना चाहिए कैसे, तो कृष्ण स्वयं दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए गोवर्धन के सामने। अच्छा, और गोवर्धन जो गिरिराज महाराज हैं वो बोले कि तुम्हारा जितना भी भोजन तुमने मुझे भोग लगाया है वो मैं सब खाऊंगा। वो अन्नकूट जो है जो किया था उन लोगों ने, तो एक मतलब पर्वत जैसा जो ना सब भोजन इकट्ठा किया था, सब प्रकार के व्यंजन बनाए, एक बड़ा पर्वत जैसा था, तो उसको जो है गिरिराज महाराज खाना शुरू कर देते हैं उतना सब भोजन। उन्होंने जब खाया तो फिर पानी पानी तो रखा नहीं था, और पानी इतना लाते थे कहां से, तो आसपास के जितने कुंड हैं सब सुखा दिए उन्होंने पानी पी करके, पानी उन्होंने मांगा नहीं, पानी कोई देता भी नहीं उनको, भोजन तो इतना सब था तो सब खा लिया, जितने कुंड थे सब सुखा दिए उन्होंने पी करके, पानी पी लिया। इसके बाद फिर जो है अपने दाएं हाथ से जो है जितना भी भोजन था ब्रजवासियों का उन्होंने खाया, और फिर अपने बाएं हाथ की उंगलियों को चाट रहे हैं, और जो ग्वाले थे वो भागे देख करके हैं कि आप हमको खाएंगे क्या, अब इस जितना भी भोजन सब खा लिया अब हमको भी खाएंगे क्या, सब ब्रजवासी भागने लगे उनको देख करके। और ये जो गोवर्धन महाराज हैं वो चिल्ला रहे थे अन्योर 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 मतलब और लाओ और लाओ। अब जितना सब भोजन तो सब खा लिया, अब चिल्ला रहे और लाओ और लाओ, अब और कहां से लाओ। तो फिर ये बड़ी सुंदर लीला है। तो ये तो थोड़ा सा उन्होंने एक नमूना दिखाने के लिए बताई है ये लीला। तो आचार्य रानी जाहनामा देवी की प्रार्थना पर श्रीजीव गोस्वामी ने जो है श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, इन तीनों को छह गोस्वामियों के जो पुस्तकें हैं उनको वृंदावन से बंगाल में भेजा। उन्होंने तीन भक्तों को नियुक्त किया। तो छह गोस्वामियों के जो ग्रंथ थे ये सब हाथ से लिखे हुए ग्रंथ थे छह गोस्वामियों के। और उन दिनों जो छपाई नहीं होती थी किताबों की, तो सोचो कि पुस्तकें कितनी कीमती थी वो पुस्तकें। तो ये हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उनको जो संदूक में भर भर के जीव गोस्वामी ने इन पुस्तकों के प्रचार के लिए, पुस्तकों के वितरण के लिए, कि इन पुस्तकों का जो है ज्यादा से ज्यादा उसकी मतलब प्रतियां बनाई जाए, लिखी जाए। छप नहीं सकते थे, छपाई मशीन नहीं थी उन दिनों, तो हाथ से लिखना है। तो गौड़ देश में उन्होंने भेजा गोस्वामियों के ग्रंथों को, बंगाल में भेजा। और उन्होंने फिर बंगाली में उनका अनुवाद लिखा, ये संस्कृत ग्रंथ है, बंगाली में अनुवाद लिखा वहां। और फिर पूरे बंगाल में वो ग्रंथ बांटे गए, उड़ीसा में भी बांटे गए। और उन तीनों भक्तों ने बहुत प्रचार किया और सैकड़ों भक्तों को दीक्षा दी। 1542 में श्री जीव गोस्वामी ने श्री राधा दामोदर भगवान की स्थापना की सेवा कुंज में वृंदावन में। इनकी समाधि उसी मंदिर के अहाते में है। और जीव गोस्वामी भगवान की नित्य लीला में जानते कौन है? जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं, विलास मंजरी हैं जीव गोस्वामी।